Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yugayatam nimeshena chakshusha pravrishayatam. Shunyayatam jagat sarvam. Govinda virahename. Sri Chaitanya Mahaprabhu Ukt Shikshashtak Ka Saptam Shlok. Viraha Katarne. Sri Chaitanya Mahaprabhu Kehte Hain Ki Ek Nimesh Ek Kshan Lagbhag. Actually, dono to ek hi nahi hai. Uska matlab bahut thoda samay. To yug mein ek nimesh, ek yug jaise anubhav karta. To yug shabd ka matlab dirghakal. Vishesh arth hai 12 साल या एक युग कलि युग द्वापर युग त्रेता युग सत्य युग एक महायुग ये चारों युगों हजाबा एक महायुग बोलते तो ये सब युग बोलते तो इस श्लोक का अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु अनुभव करते हैं कि गोविंदा का विरह से वे एक निमेश बहुत दीर्घ काल जैसे अनुभव करते और इसके पहले वो श्लोक नायनम गलदशुद्धारया वो तो है गोविंद विरह से तो 12 साल केवल रोना 12 साल एक पूरा युग केवल रोना 12 साल ना एक क्षण हो गया परंतु चैतन्य महाप्रभु की अनुभूति में 12 साल जैसे है और शून्यायतम जगत सर्वम पूरा जगत शून्य जैसे है मतलब कुछ नहीं है जगत में जिससे मैं कुछ भी सुख मिल सकता हूं यदि गोविंद की संगति नहीं हो तो सन्यासियों तो ऐसे ही देखना चाहिए शून्य जगत जगत में कुछ नहीं जो सन्यासी है तो जगत में सब कुछ जो है तो किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होना चाहिए सन्यासियों के लिए ऐसे ही देखना जगत शून्य है उचित अगर कुछ देखते ओ वो अच्छा है मुझे वो चीज चाहिए ऐसे ही देखना सन्यासियों के लिए उचित नहीं चैतन्य महाप्रभु का विलाप है कि जगत शून्य है सब कुछ शून्य है क्योंकि मुझे गोविंद की संगति नहीं है तो ये प्रेम भावना आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च कक्ष है तो शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु द्वितीय श्लोक में बोले कि मुझे अनुराग नहीं है गोविंद का नाम के लिए। तो ऐसे त्रिनादपि सुनिच्छता विनम्र भाव से भक्तों सोचते हैं कि मुझे कुछ भी अनुराग नहीं है गोविंद के लिए, परंतु वास्तव में शुद्ध भक्तों विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु के उच्च पार्षद हैं उनका अनुराग इतना है कि एक निमेश में भी गोविंद का दर्शन, गोविंद की संगति नहीं मिलने से उनका विचार में तो पूरा जगत शून्य होते हैं। और एक निमेश यदि गोविंद का दर्शन नहीं होते तो वो निमेश तो बहुत बहुत दीर्घ काल जैसे लगते और दुख से, विरह दुख से रोते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसके पहले भी बोले, आई नंद तन किंग फतितांग विषमे फतितंग मांग विषमे भवम बुधौ, कि मैं इस विषम भौतिक जगत में गिल गए हूँ, दुख सागर के, इस भौतिक जगत दुख का सागर जैसे है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की वो सभी दुखों से बचे, परंतु इस दुख गोविंद विरह दुख वो सांसारिक दुख से और बहुत तीव्र होते। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति के बारे में कि राजा विद्या राजा गोह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम, कि ये श्रेष्ठ विद्या है, परम गुह्य है, परम पवित्र है, और ये धर्म का प्रत्यक्ष से अनुभव होते हैं, और इस धर्म अवलंबन करने में सुसुख होते हैं। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है या अनुयायी के दास के दास के दास है, हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। हम सबको कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुख से विमुक्त हो जाओ, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति सुख सागर है। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं भौतिक दुख सागर से कृष्ण की कृपा से बच गया हूँ, तो अभी वो दुख जो मैं अनुभव करता हूँ वो विरह दुख गोविंद विरह दुख, वो दुख वो साधारण आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश भौतिक क्लेशों से और बहुत 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 तीव्र है। तो हम किस लिए हम प्रचार करते हैं? हम प्रचार करते हैं तो आ जाओ कृष्ण भक्ति करो, हरि कृष्ण बोलो और दुखी रहो, ये हमारा प्रचार है क्या? दुखी रहो गोविंद विरह दुख।
तो ये राजा विजय राजा गुह्य है। राजा गुह्य है कि वो विरह दुख परम सुखी है। इसको समझना न्याय और तर्क से संभव नहीं है, अनुभव करना है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम इतना सा था जो साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। तो कैसे प्रेम अनुभव किया है कुछ वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो गोविंद विरह दुख या सुख से कभी कभी उनका दिव्य शरीर कूर्म रूप जैसे था, अर्थात उनका सिर हाथों पायों तो सब शरीर के अंदर प्रवेश किया है जैसे कूर्म कच्छप। और कभी कभी उनके हाथों पायों तो उस शरीर से दूर चले गए और बीच में खाली त्वच था। तो ये सब वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। और कृष्ण इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंतव्य करते हैं कि ऐसे प्रेम लक्षण तो किसी शास्त्र में ऐसे वर्णन नहीं है और इतिहास में भी कोई दूसरा का ऐसे प्रेम लक्षण नहीं था। ये कारण है गोविंद विरह। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक होने के इच्छुक है, हम चैतन्य महाप्रभु का प्रेम की पूजा के ऐसे प्रेम अनुभव करना हम कल्पना नहीं कर सकते। परंतु वो प्रेम की पूजा करने से हम भी आशा करते हैं कि वो प्रेम सागर का एक बूंद प्राप्त करना हमारे लिए संभव होगा। ये षड गोस्वामी अष्टकम जो हम अभी गए शिल प्रभुपाद बोले जो उनके शिष्यों जो वृंदावन धाम में सेवा करते हैं निवास करते हैं उनका यही षड गोस्वामी अष्टक कीर्तन हर रोज गाना चाहिए। शिल प्रभुपाद बोले जो मेरे शिष्यों जो व्रज में रहते हैं उनका चरित्र व्रज के षड गोस्वामी का आदर्श के अनुसार होना चाहिए। तो व्रज धाम निवास करना और भोग विलास करना बहुत क्या बोलते हैं अनुचित है, असमंजस है। तो वो षड गोस्वामी अष्टक में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ का विरह भाव का वर्णन है। हे राधे व्रज देवी के जललित हे नंद सुन कुतः, हे राधे हे ललिता हे व्रज देवियों हे नंद सुन कृष्ण कहाँ है कहाँ है। तो कृष्ण भगवान सर्वत्र विराजमान है और विशेष का व्रज धाम में है। परंतु विरहा भाव से शुद्ध भक्तों, विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संचित है, तो वे कृष्ण के संगति में होते हुए भी तो विरह भाव अनुभव करते हैं। तो इस विरह भाव है चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान, उनके कुछ विशेष प्रदान है। यदि गौर ना हो तो तभी की हो तो केमने धरे तंदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन योग्य थे श्री राधार की महिमा जगत में प्रचार करने के लिए। और विपिन माधव जगते जान जानते के विपिन क्या है विपिन बौरज जुवती भावती भगति सकती हो तो का मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरीशा बरज जुवती भावेर भकति सकति हो तो का चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन हमको मधुर वृंदावन लीला विशेषकर व्रज युवती लीला व्रज गोपी लीला कौन हमको समझा सकते। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है राधा कृष्ण और व्रज गोपियां की महिमा प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। और इस विरह भाव की परम भक्ति है उस भक्ति जिसमें भक्तों यदि एक निमेश में भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं मिलते तो वो एक निमेश 12 साल जैसे अनुभव करते और 12 साल का दीर्घ उत्पीड़न जैसे अनुभव करते हैं। तो विरह भाव का विश्लेषण है गोस्वामी साहित्य में। गोस्वामी साहित्य का मतलब जो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी ने रचित किए है, और उसमें भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी का विश्वनाथ चक्रवर्ती का। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मुख्य आचार्यों पार्षदों इस विरह भाव का विश्लेषण किए कि ये कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च स्तर है, और ऐसा हो सकता है कि भक्तों कृष्ण की साक्षात सानिध्य में भी विरह भाव अनुभव करते हैं या डरते हैं कि अभी कृष्ण है हमारे साथ परंतु शायद चले जाएंगे। तो इस प्रकार विरह भाव इतना उत्तम भाव है। तो ये भाव मर्यादा भक्ति के बहुत ऊपर है, और हम बहुत ही भाग्यवान है कि हम जो अगर हम एक निमेश में कुछ ना कुछ इंद्रिय सुख नहीं मिलते है, हम बहुत दीर्घ काल जैसे लगते है। तो आइसक्रीम सिगरेट गुटखा ये सब तो 3 मिनट से सिगरेट नहीं पी तो मुझे सिगरेट दे दो। मुझे याद है स्कूल में मेरा एक दूसरा विद्यार्थी स्कूलमेट तो विद्यार्थी हम कोई विद्यार्थी नहीं थे तो हम ऐसे नहीं मानते थे कि हमारा अर्थ है विद्या। तो स्कूल का रूल है तो स्कूल में स्मोकिंग मना है तो दोपहर वो अवकाश का समय तो स्मोकिंग कर सकते स्कूल का बाहर जाकर तो फिर उसके बाद और 3 घंटा काल सिगरेट नहीं पीना और 4 बजे और घंटा बजाते और तुरंत भागा संतुष्टि विरह भाव सिगरेट नहीं पी 3 घंटा का युगायतम निमेषेन। तो हमारा आदत ऐसे होते हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं तो कैसे इंद्रिय सुख हो सकते स्थूल या सूक्ष्म। कृष्ण भक्ति जीवन में स्थूल इंद्रिय सुख वर्जित है तो सूक्ष्म इंद्रिय सुख भी हो सकते। चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दे ये भक्तों के लिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छाएं भक्ति के बाधा है। यदि हम भक्ति करने से भौतिक लाभ मिलना चाहते या पूजा लोग मुझको सम्मान देंगे या प्रतिष्ठा मैं बड़ा भक्त बन जाऊंगा तो ऐसे सोचने से भक्ति नष्ट हो जाता है। परंतु हमारा अनादिकाल से अभ्यास है कि हम चाहते हैं कि दूसरों हमको सम्मान देंगे मैं बड़ा होऊंगा मैं आराम में भक्ति करूंगा। ये तपस्या का जरूरत नहीं है। आराम से भक्ति आराम के बीच भक्ति करो तो ये सब भक्ति के बाधा है। तो खुद का मन देखना चाहिए उसमें क्या है हमारा क्या चिंतन है कृष्ण का चिंतन या जगत में और सब कुछ जो है वो सब विषय के ऊपर है। गोविंद विरह वो हमारा लक्ष्य है। तो कितना दूर हम है उससे हमको देखना चाहिए। आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से विराह भावी नहीं होना चाहिए। हमें सेवा करना चाहिए और वो सेवा का आदर्श वो विराह भाव जो श्री चैतन्य महाप्रभु और सब महान महान भक्त अनुभव करते हैं वो प्रेम हम पूजा करते हैं। पूजल राग फत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने Gorya Gun ki bhakti bhavana is prakar varnan kiya hai ki wo ragapat krishna bhakti mein jura anurag jisse viraha bhav utpanna hote hain hum wo rag marg ki pujak hai jaise bhakti sang sarsun thakur ne kaha o rup goswami ka upadesh amrit ka vachan ka mantavya karne mein shila bhakti sang sarsun thakur ne kaha ki Srila Rupa Goswami Upadesh Amrit mein sthapan kiya hai ki Tribhuvan mein sarvoch sthan hai Radha kun. Tribhuvan ka matlab bhubhuvaswa ya adhyatmik Tribhuvan hai. Vaikunth, Ayodhya, Golok. So, Tribhuvan mein sarvoch sthan hai Radha Kund. Aur Radha Kund mein nivas karna sarvoch siddhi hai. So, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ne kaha ki mein Radha Kund mein nivas nahi karunga Govardhan mein. So, Upadesh Amrit mein Srila Rupa Goswami ne sthapan ki ki Govardhan atyutam hote hue bhi Radha Kund jaise uch nahi hai. Yehi sab adhyatmik taratamya hai. Aise nahi hai ki Govardhan Tucha, to aise nahi hai. Govardhan to ati mahan hai. To Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ne kaha ki, main Govardhan mein nivas kurunga. Aur mere sab gurujan, Rup, Raghunath, Bhaktivinoda Thakur, वे सब राधा कुंड में निवास करते हैं तो मैं थोड़ा दूर से निवास करूंगा और राधा कुंड जाऊंगा सेवा के लिए और वापस आऊंगा गोवर्धन तो वो आदर्श राधा कृष्ण सेवा जो अति अति उत्तम है तो Radha Krishna ke sevakon ki seva karna Gorya Gan ka laksha hai. To ye bahut uch vichar hai jo Chaitanya Mahaprabhu humko sikhaya hum jo is Visham Vavambhudi mein hai, is bhautik sansar mein hai, aur hum jo prayas karte hai, Hare Krishna Mahamantra jap karna, charni ampalan karna, to hum is nicha vasta mein, bahut upar dekh sakte, ki व्रज भक्ति ही है और हमें वहां जाना है हम अति अयोग्य होते हुए भी हम श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों से इस आशा मिले कि हम उनकी कृपा से अधिकार मिलेंगे वो व्रज धाम में सेवा करने के लिए, वो व्रज धाम में सुख अति तीव्र होते हैं और दुख भी अति तीव्र होते हैं। वो महान सुख जो होते हैं रासलीला में रस भंग के बाद, अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो रस विलास रस नृत्य से जाने से वो विरह दुख जो होते हैं वो संगम सुख से और भी तीव्र होते हैं। और श्री कृष्ण का मथुरा प्रस्थान के पश्चात व्रजवासियों कैसे विरह दुख सागा में रहते हैं वो अकल्पनीय है। तो ये सब वर्णन है गौड़ीय शास्त्र में। वो विरह सुख विरह विरह दुख जो परम सुख कैसे सुख होते हैं समझना संभव नहीं है। तो विचार यही है कि विरह तो सनातन नहीं है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, दास तो सेवा करते हैं, तो सेवियर कृष्ण जो सेवियर है इनकी सेवा करना है सेवकों से। और जो सेवक है तो सदैव प्रभु से विच्युत नहीं होते, वे संगम का अवसर मिलते हैं। वो सुख अनुभव जो होते हैं क्रौ क्रौ युगों के पश्चात, अर्थात एक निमेश के पश्चात, एक निमेश विरह दुख अनुभव करने के पश्चात कृष्ण की संगति प्राप्त करने से वो सुख जो होते हैं वो विरह दुख से और भी अधिक होते। तो ये काल चक्र होते हैं व्रज लीला में। इस भौतिक संसार में काल चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो व्रज धाम में वो काल चक्र है विरह संगम विरह संगम विरह संगम, और हर एक बार विरह होते हैं तो वो दुख अनुभव और अत्यंत तीव्र होते हैं पूर्व काल का विरह की तुलना में, और वो सुख अनुभव वो भी और बहुत अधिक होते। तो इस प्रकार प्रेम सुख का अनुभव सदैव बढ़ते रहते हैं। तो ये सब कल्पना के अतीत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ऐसा लगता है कि ये सब वर्णन कल्पना के अतीत है। तो हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम रघुनाथ दास गोस्वामी का श्रीमुख से ये सब सुनने हैं। तो कल्पना के अतीत शास्त्र वर्णन के अतीत होते हुए भी विश्वास करना चाहिए, और जो विश्वास करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कि कृपा प्राप्त करने के लिए अधिकारी होते हैं। तो ये सब परम रहस्य में प्रवेश करना केवल कृपा से संभव है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हमको सिखाए, आई नंदन पहले वो नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति वो कि भगवान इतना कृपामय है कि वे नाम के रूप में सरलता से उपलब्ध है और भगवान का नाम तो केवल एक साधारण ध्वनि नहीं है, वो नाम ही कृष्ण ही है। तो पापी दीन अज्ञानी और सब लोग भगवान का नाम बोल सकते हैं और नाम बोलने से शुद्ध होते हैं। तो नाम साधना करने से चेतो दर्पण मार्जित होते हैं और धीरे धीरे भक्तों भक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं। तो पहले चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे भक्तों आनंदाम बुद्धि सुख सागर भक्ति सुख सागर में डूब जाते हैं नाम का प्रभाव से। तो ये सब संभव कैसे होते हैं? कृपा से। भक्तों की श्रद्धा है कृष्ण और कृष्ण भक्ति में, वो श्रद्धा से हम कृष्ण की कृपा मिलते हैं। और यदि श्रद्धा इतनी से है कि हमारी पूरी श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भावना के वर्णों में, तो हरि नाम करते करते तो हम इनकी कृपा से उस अति रहस्यमय अति गुह्यमय वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते और व्रज से और भी रहस्यमय लीला है गौर लीला। भगवान कृष्ण स्वयं राधा की भावना आस्वाद करने के लिए सन्यासी के रूप में आते हैं और सदैव विरह भाव अनुभव करते। तो मुझे मालूम नहीं आप लोग योग्य है ये सभी कथा सुनने के लिए, मुझे मालूम है कि मैं योग्य नहीं हूँ ये सब कहने के लिए, परंतु यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हमको सिखाए तो सुनना चाहिए, यदि हम नहीं सुनते तो हम कैसे मालूम पड़ेंगे कि यही हमारा लक्ष्य है। केवल भौतिक दुखों से विमुक्त होना हमारा लक्ष्य नहीं है, सेवा सनातन सेवा हमारा लक्ष्य है और कृष्ण भक्ति में उत्तम स्तर यही है विरह भाव। और चैतन्य महाप्रभु और उनके मुख्य पार्षदों उनका स्वयं आदर्श के अनुसार हमको सिखाए कि यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। हे राधे व्रज देविके हे नंद सुनो कुतः Shri Govardhana Kalpapada Patale Kalindi Vanyekuta Koshantaviti Saravato Rajapuri Kedaya Mahavivalo Vande Rupa Sanatano Rakuyago Shri Jiva Gopalako To wo Ked Viraha Ked Sarvotam To bhakti karne se khed anubhav karne ki main sadaiva aasha karta hoon Krishna ki sangati nahi milto to wo khed bhav se dukh anubhav karte hain param bhakta wo dukh jo param sukh hai aur wo param dukh ya param sukh ki puja karna gauriya sadhana hai hare krishna iske bare mein Srila Prabhupada ne kaha chaitanya mahaprabhu vaisanyasi hai Unka kuch bhi prayojan nahi hai. Sanyasi ka matlab jo sab kuch tyag kiya hai. Unka kyon rote hai Govinda ke liye? Pura sangsar ko tyag kiya hai sanyasi. Kyon Govinda ke liye rote hai? Wo satya prayojan hai. Govinda viraha. Govinda prayojan. Govinda prayojan, Govinda akele nahi hai. Govinda ke sat, pran hai, vrindavan hai, gopiyang hai, nritya vilas hai, bhojan bhi hai, sab kuch hi hai, wo prayojan hai. To sanyasi ang sab kuch tyag karte hai, aur sab kuch milte hai. Bhai, Bandhav, Kutumbung, Swadisht, Bhojan, Nritya, Sanyasiyon ke liye Nartan karna mana hai. To ekdam gambhir honna chahiye, Sanyasiyon. Parantu, Vaishnav Sanyas hai. Vrajavilas, Govinda ke liye Chaitanya Mahaprabhu rote hai. Srila Prabhupada aur bhi likhte hai ki bhajan ka sarvoch kaksh hai yadi ek vyakti rote hai asu तो नदी जैसे उसका धार होते हैं और सब कुछ शून्य जैसे देखना है गोविंद विरह से वो ही कृष्ण भजन का सर्वोत्तम कक्ष है श्रील प्रभुपाद और भी कहते हैं भक्तों का लक्ष्य है कि हरि कृष्ण महामंत्र जप करने का समय उनके अंकों अश्रु पूर्ण होगा उनकी गदगद वाणी होगी और उनका हृदय स्पंदन होगा ये सब अनुकूल चिन्ह है कृष्ण कीर्तन में भाव में भक्तों तो पूरा जगत गोविंद विरह से शून्य अनुभव करना चाहिए ये गोविंद विरह का चिन्ह है संसारिक जीवन में हम सब गोविंद से विरहित है, परंतु हम भौतिक इंद्रिय सुख में तन्मय है। इसलिए जब हम प्रबुद्ध होते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, हम बहुत इच्छुक होते हैं गोविंदा का मिलन करने के लिए, और हम इस प्रकार सोचते हैं कि गोविंदा के बिना संपूर्ण जगत शून्य होते हैं। हरे कृष्ण। So, can do kirtan a few minutes. और उसके बाद मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, उसके बाद अगर किसी का प्रश्न हो तो 7 बजे तक प्रश्नोत्तरी।
जैसे हम कुछ मंदिर में नृत्य करते हैं या कुछ कथा सुनते हैं,
मूर्ति
मंदिर में नृत्य करते हैं, कीर्तन में
कीर्तन नृत्य
नृत्य करते हैं और कुछ कथा सुनते हैं भगवान के लीला विषय में, तो हमको कुछ भीड़ भाव जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर बाहर जाते हैं तो भौतिक आंखों में आंसू रोते हैं ऐसे लोग, तो बाहर जाते हैं तो भौतिक आकर्षण होते हैं, जैसे कुछ सिगरेट भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं।
ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं सुनता, या कितना बार सुना।
तो वो भौतिक है कि आध्यात्मिक।
मंदिर में हम पूरा प्रेम भावना से भावित होते हैं, अष्ट सात्विक विकार होते हैं, और बाहर जाकर हम सब कुछ तुरंत भूलते हैं। प्रेम भावना जो हम अनुभव करते हैं वो पक्का प्रेम भावना नहीं, पक्की नहीं है। अच्छा है यदि हम भक्ति भावना अनुभव करते हैं, वो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं भक्ति करता हूँ लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं हो सकते क्योंकि मैं सबसे नीच हूँ, तो ऐसे नहीं है। तो भक्ति करने से हृदय नरम होना चाहिए और अनुभव भी होते हैं, तो वहाँ जाकर मायक आकर्षण होते हैं या अंदर में भी हो सकते हैं। ऐसे मत सोचो कि माया इस मंदिर में नहीं है, कम से कम मन में है। तो जो दो उत्तर है, एक है वहां मत जाओ, ये अंदर में आपका पूरा मायिक अनुभव भी हो सकते, या बाहर जाके हृदय में गोविंद साथ में लेके जाए, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्वास। तो कृष्ण को भूलो मत, और इसलिए बाहर जाने का समय अच्छा है तो भक्त संघ में जाओ, अकेले नहीं है। और केवल कृष्ण की सेवा के लिए बाहर जाओ, आप ब्रह्मचारी हो, आपका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो माया का आक्रमण होते हैं और इसलिए हम साधना करते हैं, और धीरे धीरे चैतो दर्पण मार्जनम होगा। लगते है इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया था।
कितने बार
हम भक्ति करते हैं तो माया हमको आक्रमण करते है, क्यों हम माया को बुलाते हैं? वो महाभारत नहीं, वो कहानी है नहीं, आपको मालूम है नहीं, नहीं? तो कैसे माया हम को आक्रमण करते, कैसे हम माया से आसक्त होते? तो ये प्रश्न एक राजा का राजदरबार में, ये राजा उनके सब मंत्री और उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि माया का प्रभाव इतना सा होते क्यों, हम माया को नहीं चाहते क्यों? तो एक एक करके सब बड़े बड़े पंडित ने उत्तर दिया, तो सब अलग अलग उत्तर दिए थे। ये सब देखते थे, एक वृद्ध विद्वान ब्राह्मण तो एक कोने में बैठते हैं और कुछ नहीं बोले, तो सब वो सब उत्तर जो सब दिए थे तो वो सब सुनने से राजा तो संतुष्ट नहीं था। और वो एक वृद्ध पंडित तो कुछ नहीं बोल, तो सब वो पंडित से पूछे तो आपका उत्तर क्या है, हम माया से इतना आसक्त होते क्यों? तो वो पंडित ऐसे बैठ रहे थे, फिर अचानक उठ जाके एक स्तंभ को आलिंगन, दृढ़ आलिंगन किया और जोर से बोला, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़। सब लोग क्या वो पागल हो गया? तो ऐसे एक दो मिनट ऐसे चलाने से सबको बताया, हम बोलते कि हम प्रयास करते माया को छोड़ना, लेकिन हम माया को ऐसे आलिंगन करते हैं, हम माया को नहीं छोड़, माया तैयार है हमको चरण, लेकिन हम तैयार नहीं है माया को चरण। तो मैं शुद्ध भक्त हूं, माया क्यों ऐसे आक्रमण करते हैं मुझको, मैं प्रेम भक्त हूं, तो किस लिए मेरा आकर्षण है जगत के सब चीजों के, क्यों? हरे कृष्ण।
चैतन्य भागवत में कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो भुवनेश्वर मंदिर में जब जाते हैं तो शिव जी को देख के कीर्तन करते हैं और बहुत भाव में आ जाते हैं, ऐसा तो हम कैसे समझे ये लीला को, ऐसा कि वो शिव जी का कीर्तन कर रहे हैं ऐसा?
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शिव जी परम भक्त ऐसे मानते, चैतन्य मंगल में वो कहानी है वो भुवनेश्वर के बारे कि शिव जी वो कैसे शिव कुछ प्रसाद मिले, कृष्ण प्रसाद में बहुत प्रसन्न हुए कीर्तन किए। फिर पार्वती उसको उनको शिव जी को इतना प्रसन्न देखे पूछा गया, क्या क्या हो गया? तो मैं थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद मिला इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हो, तो मेरे लिए कुछ बच गया। और क्या बोलते हैं, नाक
नाखून में तोरस है तो वो पार्वती को दिया। पूरा कहानी क्या है मुझे याद नहीं, लेकिन वो बाद में वो शिव जी की कृपा से जगन्नाथ पुरी में रहते हैं और सबको बहुत बहुत प्रसाद देते हैं, तो पहले बहुत दुर्लभ था। और पुरी जाने के पहले, क्योंकि ज्यादा लोग तो उत्तर दिशा से आते हैं, तो एक्चुअली विधि है तो पहले भुवनेश्वर जाना है, भुवनेश्वर लिंगराज का दर्शन करना है और उसके पश्चात जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन करें, वो विधि है। वो पूरा कहानी मुझे याद नहीं है। तो अनादिकाल से वो ही विधि है। तो परम वैष्णव दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु लिंगराज को प्रणाम किए है और उसके पश्चात पुरी धाम गए थे। वहां पर जगन्नाथ का दर्शन मिलके चैतन्य महाप्रभु पूरा मूर्छित हो गए हैं। तो वो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु उनकी दक्षिण यात्रा में तो सब विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, देवता मंदिर, तो सब दर्शन किए सभी मंदिर में, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, स्कंद सुब्रमण्य मंदिर, गणेश लंगा गणेश महाराष्ट्र में, लक्ष्मी महालक्ष्मी कोल्हापुर, वो सब दर्शन किए हैं चैतन्य महाप्रभु। और हमको ब्रह्म संहिता प्रदान किए है जिसमें हम मंत्र मिलते हैं और क्या क्या मंत्र उच्चारण करना है शिव मंदिर में, गणेश मंदिर में। शिव मंदिर में क्षीरंग यथादि विकार इत्यादि, गणेश मंदिर में यत्पाद पल्लव युगंग निधायकम इत्यादि। तो इस प्रकार वो सब देवताओं विष्णु भक्त जैसे दर्शन करना है। हम साधारण भस्म लगाने वाले कपालिक शिव भक्त नहीं है, हम वैष्णव है।
महाराज
और भक्ति समृत सिंधु में वो त्रिपुंड्र शिव का तिलक लगाना है, मना है, ऊर्ध्वपुंड्र ये तिलक। हाँ
महाराज, एज यू मेंशन इन लेक्चर दैट वन निमिष और इट मे टेक सो मेनी बर्थ to get Krishna's sang, that Krishna's sang.
Okay.
Krishna's sang. Association of Lord Krishna.
Sang, sang.
Krishna's sang. So,
आप for... हिंदी में बताए, अगर आपकी बात नहीं नहीं समझता हूँ तो फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि
तो हम जैसे साधना भक्ति के लिए जैसे संग तो ये कि इन हरि नाम कीर्तन
हम अभी साधना भक्ति करते हैं और कृष्ण विरह बहुत उच्च विषय है, तो वो हमारा लक्ष्य है।
हाँ, तो जो
साधना भक्ति में हम सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं वो हमारा लक्ष्य है, वो विरह भाव की पूजा हम करते हैं और जो विरह भावी है इनकी पूजा हम करते हैं। तो हमारी स्थिति है काम क्रोध लोभ इत्यादि से आसक्त है और पीड़ित है, तो हम अभी साधना अवस्था में है। ये सब विरह भाव बोलने के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं सबको कहता हूँ तो ये सब साधना चढ़ के और
नकल विरह भाव अनुभव करो, ऐसे नहीं। अभिनय और भक्ति दोनों अलग है।
तो हम जैसे को हरिनाम कीर्तन में जो एक्सपीरियंस करते हैं हम, वो टेस्ट, वो जो वो हमारे लिए वो संग है,
वो हरिनाम कीर्तन में और सेवा में और भक्ति के सब श्रवण कीर्तन स्मरण ये सबों में हम कभी कभी हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से कुछ भक्ति अनुभव करते हैं। तो वो पूरा प्रेम भावना नहीं है, वो नमूना भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि भविष्य में यदि हम इस पथ में रहेंगे तो कितना विशाल भाव हम अनुभव कर सकते हैं। और भक्ति, हम भक्ति करते हैं हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि होते, तो फिर भी भक्ति का प्रभाव ही है। तो वो काम क्रोध लोभ इत्यादि होते हुए भी तो यदि हम कम से कम कुछ ना कुछ सिंसेरिटी मतलब अकपट भाव से भक्ति करते हैं तो भक्ति देवी का आशीष से हम कुछ अनुभव करेंगे। लेकिन वो अनुभव से हमें नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे साधना करना की आवश्यकता नहीं है। वो अनुभव करने से ही समझना चाहिए कि मुझे और भी तीव्रता से साधना करना चाहिए।
महाराज जो शब्द आपने यूज किया जो निमिष,
निमिष
निमिष निमिष जो मतलब वो आपकी
ब्लिंक ब्लिंक इंग्लिश में ब्लिंक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं?
पलक झपकना, पलक झपकना, पलक झपकना। तो इट डिपेंड्स ऑन कृष्णाज मूड दैट कृष्णा इज सोराट। अगर कृष्णा की इच्छा हो तो निमिष में भी आपको कृष्ण संग दे सकते हैं, नहीं तो करोड़ों करोड़ बर्थ भी लग सकते हैं कृष्ण। सो कुड यू एक्सप्लेन जस्ट महाराज?
और कृष्णा हमको उपाय दिया है साधना भक्ति का उपाय, जिससे हम अधिकार मिलेंगे उनकी पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली अधिकार या अनाधिकार तो प्रश्न नहीं है, परंतु सामान्य विधि है जो भगवान कृष्ण हमको प्रदान किया है कि ये सब नियम पालन करना चाहिए। एक निमेश में हम सर्व सिद्धि प्रेम सिद्धि मिल सकते या करोड़ करोड़ जन्मों के पश्चात, सब कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो फिर भी ऑनररी डिग्री के लिए हमें आशा नहीं करना चाहिए। ऐसा सब कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं करने से आशा करेंगे कि भगवान मुझको प्रेम प्रदान करेंगे। तो पद्धती है जिससे चित्त शुद्धि होती है, वो है चैतो दर्पण मार्जनम इत्यादि। वो वैधि भक्ति साधना जो भक्ति समृद्ध सिंधु में वर्णित है, उसका उद्देश्य है राग उत्पत्ति। मतलब वो उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण है, और यदि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे तो वो कृष्ण कथा जो हम सुनेंगे वो वैकुंठ कथा, उसका लक्ष्य नहीं होगा वैकुंठ का मन, वो लक्ष्य होगा व्रज सेवा.
क्या हम देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं?
हम क्या देव देवियों का प्रसाद ग्रहण कर सकते? कौन पूछते? क्यों पूछते? माइक से कहो. नहीं,
हम लोग तो नहीं लेते, लेकिन कभी कभी एक लेक्चर में मैं सुना था, एक महाराज बताए कि हम लोग को देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए. तो कोई अगर प्रसाद देता है
तो शास्त्र में क्या निर्देश है? भक्ति समृद्ध सिंधु में
नहीं, हमको तो नहीं लेना चाहिए.
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भक्ति और समृद्ध सिंधु में रूप गोस्वामी हमको क्या निर्देश दिया इस विषय के बारे में?
कृष्ण प्रसाद खाने के लिए.
कृष्ण प्रसाद लेना और देव देवियों का प्रसाद ग्रहण नहीं करना. तो
मतलब कोई ऐसा बोला है कि आप ले?
ऐसा करता हूँ, अगर देव देवियों का मंदिर जाता हूँ, जैसे कल परसों तो एक शिव मंदिर में तो मुझको एक नारियल दे, तो उसको ग्रहण किया था, मतलब हाथ में ग्रहण किया था, लेकिन वो प्रसाद के रूप मतलब खाने के लिए नहीं. वो भक्त मुझसे पूछे क्या करना है, मैं बोला था वो एक शिव भक्त को दे दो, ऐसे या साधारण हिंदू को दे दो.
कोई कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब हम देवी देवताओं को अर्पण करेंगे तो देवी देवता लोग पहले कृष्ण को अर्पण करेंगे.
नहीं, लेकिन जो देवी हमको देते हैं और जिनकी कृष्ण भक्ति नहीं है और ऐसे स्वतंत्र देवता जैसे उस बुद्धि से अर्पण करते हैं, तो वो अर्पण तो देव देवी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे केवल कृष्ण भक्तों से ग्रहण करते. जैसे आप वैष्णव है, आप अभक्तों से कुछ भी ग्रहण नहीं करते.
तो अगर कोई दे तो हम लोग लेके और किसी को दे सकते
हैं? हम ऐसे कर सकते.
गुरुमाज नामाकल में जो नृसिम्हादेव को भोग लगता है, वो भोग प्रसाद के रूप में हम अंजनिया हनुमान को लगता है और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं.
अच्छा,
तो हमारे लोकल भक्त सब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो उचित है?
हनुमान राम के भक्त है, राम तो नृसिंह से अभिन्न है. क्या है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक नागर है जिसका नाम है नामाकल, और वहां पर एक प्राचीन स्वयंभू नृसिंह विग्रह है, और वो मंदिर के सामने एक हनुमान मंदिर है जो अति प्राचीन नहीं है, और वो हनुमान मंदिर वो नृसिंह मंदिर से और बहुत प्रसिद्ध है, और वो हनुमान कितना लंबा है, तो 3 मीटर जैसे, उसके ज्यादा 4 मीटर, और वो हनुमान की एक विशेषता है कि उनके ऊपर छत नहीं है, अगर छत हो तो अपने आप तोड़ जाते हैं, और हनुमान धीरे धीरे और भी लंबा हो जाता है. तो विधि है वो नृसिंह मंदिर में वो नृसिंह का भोग जो नृसिंह देव को अर्पण किया है तो वो प्रसाद अंजनेय को देना है और उसके बाद सबको बांटना है। तो यहाँ का प्रश्न क्या है, भक्तों का लेना है और क्या विधि है? थोड़ा विचित्र है क्योंकि हनुमान राम जी का भक्त है, तो राम और नरसिंह अभिन्न है। हम तो ऐसी विधि स्थापन नहीं करेंगे अगर हम नृसिंह की पूजा करेंगे, लेकिन वहाँ होते हैं और लगते नृसिंहदेव और हनुमान दोनों आपत्ति नहीं करते। तो कुछ तीर्थ स्थल में कुछ असाधारण विधि होते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में कौन सी विधि के अनुसार जगन्नाथ की पूजा होती है? वैदिक पंचरात्रिक नहीं, दोनों तो नहीं, तो जैसे है वैसे है जगन्नाथ की सेवा। देश नियम, देश नियम शंकराचार्य ने स्थापित किया और रामानुज उसको परिवर्तन करने चाहते थे और जगन्नाथ रामानुज का प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया। और रामानुज जब पुरी धाम गए थे तो आगम विधि के अनुसार, वैष्णव विधि के अनुसार वो जगन्नाथ की पूजा विधि परिवर्तित करने चाहते थे, तो ऐसा संकल्प करके रामानुज तो सो गए है और संकल्प किया कि काल में वो सब पंड से बात करने से ये सब परिवर्तन करूँगा। और अगला दिन सुबह रामानुजाचार्य जग गया कुर्मक्षेत्र में, जो कितने दूर, 150 किलोमीटर पूरी से दक्षिण है। मतलब जगन्नाथ तो जैसे ही पूजा ग्रहण करते तो वैसे ही अच्छा लगता।
हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने बताया कि हम देवी देवताओं का जो ऑफर किया हुआ जो अन्न है वो नहीं खाना चाहिए, अगर हम हनुमान जी के बारे में अगर देखें तो वो भगवान रामचंद्र के बहुत ही करीब के और बहुत अच्छे भक्त हैं।
बहुत अच्छे भक्त,
हाँ,
कौन है बहुत अच्छे?
हनुमान जी।
हाँ,
तो क्या उन्हें चढ़ाया हुआ अन्न हमें स्वीकार करना चाहिए?
ये सब देवताओं भी बहुत अच्छे भक्त हैं। परंतु जैसे देवताओं के भक्तों उनको भोग अर्पण करते हैं, वो विधि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भूल धारणा से वे सोचते हैं कि ये सब देव देवियों स्वतंत्र देवता है और वे सब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के अभिव्यक्ति हैं और ये सब भोग चढ़ाना, पूजा करना, अर्चन करना, ये सब का उद्देश्य है वो देव देवियों को तुष्ट करना, जिससे हम आशीष मिलेंगे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो ये सब पूरा भूल धारणा है। और हनुमान की पूजा जो चलते है आजकल तो वो ठीक नहीं है। हनुमान तो श्रेष्ठ वैष्णव है, उनको अलग पूजन करना ठीक नहीं है।
हरिनाम जप करने के बाद और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे शुद्ध आचार्य का संग प्राप्त होने पर भी उनके
जैसे क्या, हरिनाम करने के बाद
हरि नाम जप करने के बाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे शुद्ध आचार्य का संग प्राप्त होने पर भी उनके शिष्यों में इतनी ईर्ष्या और द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ?
हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्त संग क्या है, तो एक प्राणी शुद्ध भक्त की बहुत घनिष्ठ संगति कर सकती है। कौन सा प्राणी? एक मच्छर। लेकिन क्या कहते हैं तो खून निकलते। तो इससे आप विचार कीजिए। मैं इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है।
चैतन्य चैतामृत में एक कथा आती है कि वो माधवेंद्रपुरी, उसमें आती है पता नहीं, माधवेंद्रपुरी जब वो भौतिक जगत से अंतर ध्यान हो रहे थे, अप्रगट हो रहे थे, तब
विरह भाव प्रकट किया है,
और रामचंद्रपुरी जो उनके शिष्य थे आके उनको निराकार में ध्यान करने का बोलते हैं। तो रामचंद्रपुरी इतने महान भक्त के शिष्य होकर भी ऐसा मायावादी
शिष्य होने का मतलब क्या? केवल दीक्षा लेने से ही और मैं शिष्य हूं बोलने से ही शिष्यता नहीं होते। और परसों वो प्रवचन जो दिया था दीक्षा के बारे में, उसका विचार करो। मैं 50 साल से दीक्षित हूं, तो शायद आपकी दीक्षा तो नहीं हुई। बिल्कुल। हरे कृष्ण।